चैतन्य चरिता अमृत मध्य लीला अध्याय 18 श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा वृंदावन में भ्रमण। श्री चैतन्य महाप्रभु ने सारे वृंदावन में घूमकर सारे चर तथा अचर जीवों को अपनी चितवन से प्रफुल्लित किया। हर व्यक्ति को देखने में महाप्रभु को प्रसन्नता होती। इस तरह भगवान गौरांग ने वृंदावन का भ्रमण किया। श्री गौर चंद्र की जय हो। श्री नित्यानंद प्रभु की जय हो। अद्वैत प्रभु की जय हो। तथा भगवान चैतन्य के भक्तगण श्रीवास ठाकुर आदि की जय हो। श्री चैतन्य महाप्रभु प्रेमाविष्ट होकर नाचते रहते थे, किंतु जब वे आरित धाम आए तो उनकी बाह्य चेतना जागृत हो उठी। श्री चैतन्य महाप्रभु ने स्थानीय लोगों से पूछा कि राधा कुंड कहाँ है, किंतु उन्हें कोई भी न बता सका। उनके साथ रहने वाला ब्राह्मण भी कुछ नहीं जानता था। तब महाप्रभु समझ गए कि राधा कुंड नामक तीर्थ स्थल लुप्त हो चुका है, किंतु सर्वज्ञ पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान होने के नाते महाप्रभु ने दो धान के खेतों में राधा कुंड तथा श्याम कुंड खोज निकाले। उनमें बहुत कम जल था, किंतु महाप्रभु ने वहां स्नान किया। जब गांव के लोगों ने धान के खेतों के बीच स्थित दो कुंडों में श्री चैतन्य महाप्रभु को स्नान करते देखा तो वे अत्यधिक आश्चर्यचकित हुए। तब महाप्रभु ने श्री राधा कुंड की स्तुति की। समस्त गोपियों में राधा रानी सर्वाधिक प्रिय हैं। इसी तरह राधा कुंड भी भगवान को अत्यंत प्रिय है, क्योंकि यह श्रीमती राधा रानी को अत्यंत प्रिय है। जिस प्रकार श्रीमती राधा रानी भगवान कृष्ण को अत्यंत प्रिय हैं, उसी प्रकार उनका सरोवर राधा कुंड भी उन्हें अत्यधिक प्रिय है। समस्त गोपियों में श्रीमती राधा रानी निश्चित रूप से अत्यंत प्रिय हैं। इस कुंड में भगवान कृष्ण तथा श्रीमती राधा रानी नित्य प्रति जल विहार किया करते थे और इसके तट पर रास नृत्य करते थे। जो कोई इस कुंड में एक बार भी स्नान करता है उसे भगवान कृष्ण श्रीमती राधा रानी जैसा ही प्रेम प्रदान करते हैं। राधा कुंड का आकर्षण श्रीमती राधा रानी के ही समान मधुर है। इसी तरह राधा कुंड की महिमा श्रीमती राधा रानी की महिमा के ही समान महान है। राधा कुंड अपने दिव्य गुणों के कारण कृष्ण को श्रीमती राधा रानी के ही समान प्रिय है। इसी कुंड में सर्व ऐश्वर्यमान भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमती राधा रानी के साथ अत्यंत आनंद पूर्वक दिव्य लीलाएं की। जो भी राधा कुंड में एक बार स्नान करता है वह श्री कृष्ण के प्रति राधा रानी के प्रेमा आकर्षण को प्राप्त करता है। भला इस लोक में ऐसा कौन होगा जो श्री राधा कुंड की महिमा तथा मधुरिमा का वर्णन कर सके। श्री चैतन्य महाप्रभु ने राधा कुंड की स्तुति की। प्रेमा वेश में अभिभूत होकर वे राधा कुंड के किनारे भगवान कृष्ण द्वारा संपन्न की गई लीलाओं का स्मरण करके नृत्य करने लगे। इसके बाद श्री चैतन्य महाप्रभु ने राधा कुंड की मिट्टी से अपने शरीर पर तिलक लगाया और बलभद्र भट्टाचार्य की सहायता से उस कुंड से कुछ मिट्टी एकत्र की तथा उसे अपने साथ लेते गए। राधा कुंड से श्री चैतन्य महाप्रभु सुमनस सरोवर गए। जब उन्होंने वहां से गोवर्धन पर्वत देखा तो वे प्रसन्नता के मारे विह्वल हो उठे। महाप्रभु ने गोवर्धन पर्वत को देखकर भूमि पर गिरकर दंडवत प्रणाम किया। उन्होंने गोवर्धन पर्वत की एक शिला खंड का आलिंगन किया और उन्मत्त हो गए। प्रेम में उन्मत्त महाप्रभु गोवर्धन नामक गांव में आए। वहां उन्होंने हरिदेव अर्चा विग्रह का दर्शन किया और उन्हें सादर नमस्कार किया। हरिदेव नारायण के अवतार हैं और उनका निवास स्थान मथुरा रूपी कमल की पश्चिमी पंखुड़ी पर है। श्री चैतन्य महाप्रभु प्रेम में उन्मत्त होकर हरिदेव अर्चा विग्रह के सम्मुख नृत्य करने लगे। महाप्रभु के अद्भुत कार्यकलाप सुनकर सारे लोग उन्हें देखने आए। जब लोगों ने श्री चैतन्य महाप्रभु के प्रेमावेश तथा उनके शारीरिक सौंदर्य को देखा तो वे चकित रह गए। हरिदेव विग्रह की सेवा करने वाले पुजारी ने महाप्रभु का भली भांति सत्कार किया। भट्टाचार्य ने ब्रह्म कुंड में भोजन पकाया और महाप्रभु ने ब्रह्म कुंड में स्नान करने के बाद भोजन किया। उसी रात महाप्रभु हरिदेव के मंदिर में रुके रहे और रात में वे अपने मन में सोचने लगे। श्री चैतन्य महाप्रभु ने सोचा, मैं तो गोवर्धन पर्वत पर चढ़ूंगा नहीं, तो फिर मुझे गोपाल राय के दर्शन किस प्रकार हो सकेंगे। इस तरह सोचते हुए महाप्रभु मौन हो गए, किंतु भगवान गोपाल उनके विचार को जानते थे, इसलिए उन्होंने एक चाल चली। गोवर्धन पर्वत से नीचे उतरकर भगवान गोपाल ने श्री चैतन्य महाप्रभु को दर्शन दिया, क्योंकि महाप्रभु अपने आप को कृष्ण भक्त मानने के कारण पर्वत पर चढ़ने के लिए अनिच्छुक थे। गोपाल गोवर्धन पर्वत पर अन्नकूट गांव में स्थित थे। उस गांव में जो लोग रहते थे वे मुख्यतः राजस्थान के थे। एक व्यक्ति ने गांव में आकर ग्रामवासियों को सूचित किया, तुर्क सैनिक तुम लोगों के गांव पर आक्रमण करने वाले हैं। आज रात में इस गांव से भाग जाओ और एक व्यक्ति भी यहां न रहे। अपने साथ गोपाल का अर्चा विग्रह लो और यहां से पलायन करो, क्योंकि मुसलमान सैनिक कल यहां आ जाएंगे। यह सुनकर सारे ग्रामवासी अत्यंत चिंतित हो उठे। पहले उन्होंने गोपाल को उठाया और फिर उन्हें गांठुली नामक गांव में ले गए। गोपाल के अर्चा विग्रह को एक ब्राह्मण के घर में रखा गया और चोरी चुपके उनकी पूजा की जाती रही। सभी लोगों के भाग जाने से अन्नकूट ग्राम उजाड़ हो गया था। मुसलमानों के भय से गोपाल के अर्चा विग्रह को बारंबार एक गांव से दूसरे गांव में ले जाया जा रहा था। इस तरह मंदिर छोड़ने के बाद गोपाल कभी झाड़ी में तो कभी किसी गांव में और कभी अन्य गांव में रहे। प्रातः काल श्री चैतन्य महाप्रभु ने मानस गंगा नामक कुंड में स्नान किया। फिर उन्होंने गोवर्धन की परिक्रमा की। गोवर्धन पर्वत को देखते ही श्री चैतन्य महाप्रभु कृष्ण प्रेम से आविष्ट हो गए। उन्होंने नाचते नाचते निम्नलिखित श्लोक सुनाया। सभी भक्तों में यह गोवर्धन पर्वत सर्वश्रेष्ठ है। हे सखियों, यह पर्वत कृष्ण तथा बलराम के साथ ही उनके बछड़ों, गायों तथा गवाल मित्रों को सभी तरह की वस्तुएं, पीने के लिए जल, कोमल घास, गुफाएं, फल फूल तथा तरकारियां देता है। इस तरह यह पर्वत भगवान का सम्मान करता है। गोवर्धन पर्वत कृष्ण तथा बलराम के चरण कमलों का स्पर्श पाकर अत्यंत प्रफुल्लित दिखता है। तब श्री चैतन्य महाप्रभु ने गोविंद कुंड में स्नान किया और वहां रहते हुए उन्होंने सुना कि गोपाल अर्चा विग्रह पहले ही गांठुली ग्राम चले गए हैं। इसके बाद श्री चैतन्य महाप्रभु गांठुली ग्राम गए और वहां उन्होंने गोपाल अर्चा विग्रह का दर्शन किया। वे प्रेमाविष्ट होकर कीर्तन तथा नृत्य करने लगे। गोपाल अर्चा विग्रह का सौंदर्य देखते ही महाप्रभु प्रेमाविष्ट हो गए और उन्होंने निम्नलिखित श्लोक पढ़ा। फिर वे दिन डूबने तक कीर्तन करते रहे और नाचते रहे। श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा, कमल फूल की पंखुड़ियों जैसे नेत्र वाले श्री कृष्ण की वाम भुजा आपकी सदैव रक्षा करे। उन्होंने अपनी इसी भुजा से गोवर्धन पर्वत को खिलौने की तरह उठा लिया था। श्री चैतन्य महाप्रभु ने गोपाल अर्चा विग्रह का 3 दिन तक दर्शन किया। 4th दिन यह विग्रह अपने मंदिर में लौट गए। चैतन्य महाप्रभु गोपाल विग्रह के साथ साथ चलने लगे और कीर्तन तथा नृत्य करने लगे। लोगों की विशाल तथा हर्षित भीड़ भी साथ साथ कृष्ण के दिव्य नाम हरि हरि का कीर्तन करने लगी। तब गोपाल अपने मंदिर लौट गए और श्री चैतन्य महाप्रभु पर्वत की तलहटी पर रहे। इस तरह गोपाल विग्रह ने श्री चैतन्य महाप्रभु की सारी इच्छाएं पूरी कर दी। भगवान गोपाल अपने भक्तों के प्रति ऐसा ही दयापूर्ण आचरण करते हैं। यह देखकर भक्तगण भावाविष्ट हो गए। श्री चैतन्य महाप्रभु गोपाल को देखने के लिए अत्यंत उत्कंठित थे, किंतु वे गोवर्धन पर्वत पर चढ़ना नहीं चाहते थे। इसलिए गोपाल विग्रह किसी युक्ति से स्वयं नीचे उतर आए। इस तरह किसी न किसी बहाने गोपाल कभी जंगल की झाड़ी में तो कभी गांव में रुकते हैं। जो भक्त होता है वह अर्चा विग्रह के दर्शन करने आता है। रूप तथा सनातन दोनों भाई पर्वत पर नहीं चढ़े, गोपाल जी ने उन्हें भी अपना दर्शन दिया। श्रील रूप गोस्वामी वृद्धावस्था में वहां नहीं जा सकते थे, किंतु गोपाल का सौंदर्य देखने की उनकी इच्छा थी। मुसलमानों के भय से गोपाल मथुरा चले गए, जहां विठलेश्वर के मंदिर में वे पूरे 1 मास तक रहे। श्रील रूप गोस्वामी तथा उनके संगी 1 मास तक मथुरा में रहे और उन्होंने वहां गोपाल विग्रह का दर्शन किया। जब रूप गोस्वामी मथुरा में रुके थे तब उनके साथ गोपाल भट्ट गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी तथा लोकनाथ दास गोस्वामी थे। श्रील रूप गोस्वामी के साथ भूगर्भ गोस्वामी, श्री जीव गोस्वामी, श्री यादव आचार्य तथा गोविंद गोस्वामी भी थे। उनके साथ श्री उद्धव दास, माधव, श्री गोपाल दास तथा नारायण दास भी थे। महान भक्त गोविंद वाणी कृष्ण दास, पुंडरीकाक्ष, ईशान तथा लघु हरिदास भी उनके साथ थे। श्री रूप गोस्वामी ने परम प्रसन्नता पूर्वक इन सारे भक्तों के साथ भगवान गोपाल का दर्शन किया। मथुरा में एक मास रुके रहने के बाद गोपाल अर्चा विग्रह अपने स्थान लौट गए और श्री रूप गोस्वामी वृंदावन चले आए। इस कथा के मध्य में मैं गोपाल की दया का वर्णन कर चुका हूँ। श्री चैतन्य महाप्रभु गोपाल विग्रह का दर्शन करने के बाद श्री काम्य वन गए। श्री चैतन्य महाप्रभु का वृंदावन भ्रमण पहले ही वर्णित हो चुका है। उन्होंने उसी प्रेम भाव से सारे वृंदावन की यात्रा की। काम्य वन में कृष्ण के लीला स्थलों को देखने के बाद श्री चैतन्य महाप्रभु नंदीश्वर गए। वहां पर वे प्रेम से विह्वल हो उठे। श्री चैतन्य महाप्रभु ने पावन सरोवर इत्यादि समस्त विख्यात कुंडों में स्नान किया। तत्पश्चात वे एक पर्वत पर चढ़ गए और लोगों से पूछा। श्री चैतन्य महाप्रभु ने पूछा, क्या इस पर्वत के ऊपर कोई देव मूर्ति है? स्थानीय लोगों ने उत्तर दिया, इस पर्वत पर देव मूर्तियां हैं, किंतु वे एक गुफा के भीतर स्थित हैं। वहां सुगठित शरीर वाले माता पिता हैं और उनके बीच में एक अत्यंत सुंदर शिशु है जो तीन स्थानों से टेढ़ा त्रिभंग है। यह सुनकर श्री चैतन्य महाप्रभु अत्यंत प्रसन्न हुए। गुफा की खुदाई कराने पर उन्हें तीन मूर्तियां दिखी। श्री चैतन्य महाप्रभु ने नंद महाराज तथा माता यशोदा को सादर नमस्कार किया और अत्यंत प्रेमाविष्ट होकर उन्होंने भगवान कृष्ण के शरीर का स्पर्श किया। महाप्रभु नित्य ही प्रेमाविष्ट होकर कीर्तन करते और नृत्य करते। अंत में वे खदीर वन गए। भगवान कृष्ण के लीला स्थलों को देखने के बाद श्री चैतन्य महाप्रभु शेष शाही गए, जहां उन्होंने लक्ष्मी जी का दर्शन किया और निम्नलिखित श्लोक सुनाया। हे प्रिय, आपके चरण कमल इतने कोमल हैं कि हम उन्हें धीमे से अपने स्तनों पर धरती हुई रखती हैं कि कहीं आपके चरणों में चोट न आ जाए। हमारा जीवन एकमात्र आप पर टिका है, अतः हमारे मनों में यही चिंता बनी रहती है कि जब आप जंगल के मार्ग पर घूमते हैं तो कंकड़ों से आपके पैर कहीं छिल न जाएं। इसके बाद श्री चैतन्य महाप्रभु ने खेला तीर्थ देखा और तब वे बांडीर वन गए। यमुना नदी पार करके वे भद्र वन गए। इसके बाद श्री चैतन्य महाप्रभु ने श्री वन तथा लोह वन देखा। फिर वे महावन गए और कृष्ण की बाल लीलाओं का स्थान गोकुल देखा। जिस स्थान पर श्री कृष्ण ने जुड़वा अर्जुन वृक्षों को तोड़ा था, उसे देखकर श्री चैतन्य महाप्रभु प्रेमाभिभूत हो गए। गोकुल देखने के बाद श्री चैतन्य महाप्रभु मथुरा लौट आए, जहां उन्होंने श्री कृष्ण का जन्म स्थान देखा। वहां पर वे उसी सनोड़िया ब्राह्मण के घर पर रहे। मथुरा में भीड़ एकत्र होती देखकर श्री चैतन्य महाप्रभु मथुरा छोड़कर अक्रूर तीर्थ चले गए। वहां वे एकांत स्थान में रहे। अगले दिन श्री चैतन्य महाप्रभु वृंदावन गए और उन्होंने कालिया हल्द तथा प्रस्कंदन में स्नान किया। प्रस्कंदन नामक पुण्य स्थली देखने के बाद श्री चैतन्य महाप्रभु द्वादशादित्य गए। वहां से वे केशी तीर्थ गए और जब उन्होंने वह स्थान देखा जहां रास नृत्य होता था तो वे प्रेमावेश से तुरंत मूर्छित हो गए। जब महाप्रभु सचेत हुए तो वे भूमि पर लौटने लगे। कभी वे हंसते, कभी रोते तो कभी नाचते और गिर पड़ते। वे ऊंचे स्वर से कीर्तन भी करते। इस तरह दिव्य आनंद का अनुभव करते हुए श्री चैतन्य महाप्रभु ने केशी तीर्थ में वह दिन प्रसन्नता पूर्वक बिता दिया। शाम को वे अक्रूर तीर्थ लौट आए जहां उन्होंने भोजन किया। प्रातः काल श्री चैतन्य महाप्रभु ने वृंदावन लौट कर चीर घाट में स्नान किया। तब वे तेंतुली तला गए जहां उन्होंने विश्राम किया। तेंतुली तला नामक इमली का वृक्ष अत्यंत पुराना था जो श्री कृष्ण की लीलाओं के समय से वही था। उस वृक्ष के नीचे अत्यंत चमकीला चबूतरा बना था। इस इमली के वृक्ष के निकट यमुना नदी बहती थी, इसलिए अत्यंत शीतल हवा बहती थी। वहां पर महाप्रभु ने वृंदावन की शोभा तथा यमुना नदी का जल देखा। श्री चैतन्य महाप्रभु इस इमली के पुराने वृक्ष के नीचे बैठकर भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन करते थे। दोपहर को वे भोजन करने के लिए अक्रूर तीर्थ लौट आते थे। अक्रूर तीर्थ के निकट रहने वाले सारे लोग श्री चैतन्य महाप्रभु को देखने आते थे और भीड़ बढ़ जाने से महाप्रभु शांति पूर्वक नाम कीर्तन नहीं कर पाते थे। अतः श्री चैतन्य महाप्रभु वृंदावन चले जाते थे और एकांत स्थान में बैठकर दोपहर तक नाम संकीर्तन करते रहते थे। दोपहर के बाद ही लोग उनका दर्शन प्राप्त कर सके। महाप्रभु ने हर एक व्यक्ति को नाम संकीर्तन का महत्व बतलाया। तभी कृष्णदास नामक एक वैष्णव श्री चैतन्य महाप्रभु से मिलने आया। वह गृहस्थ था और क्षत्रिय जाति का था। उसका घर यमुना नदी के उस पार था। केशी तीर्थ में स्नान करने के बाद कृष्णदास कालिया दह की ओर गया और उसने एकाएक श्री चैतन्य महाप्रभु को अमली तला तेंतुली तला में बैठे हुए देखा। महाप्रभु के सौंदर्य तथा प्रेम को देखकर कृष्णदास अत्यधिक अचंभित हुआ। उसने प्रेमवश महाप्रभु को सादर नमस्कार किया। श्री चैतन्य महाप्रभु ने कृष्णदास से पूछा, तुम कौन हो? तुम्हारा घर कहाँ है? इस पर कृष्णदास ने उत्तर दिया, मैं अत्यंत पतित गृहस्थ हूँ। मैं राजपूत जाति का हूँ और मेरा घर यमुना नदी के उस पार है, किंतु मैं वैष्णव का सेवक बनना चाहता हूँ। आज मैंने एक सपना देखा है। उस स्वप्न के अनुसार ही मैं यहाँ आया हूँ तथा आपको पा सका हूँ। तब श्री चैतन्य महाप्रभु ने कृष्णदास का आलिंगन करते हुए उसे अपनी अहैतुकी कृपा प्रदान की। कृष्णदास प्रेम से उन्मत्त हो उठा और वह नाचने लगा तथा पवित्र हरि नाम का कीर्तन करने लगा। कृष्ण दास महाप्रभु के साथ अक्रूर तीर्थ आया, जहां उसे महाप्रभु का शेष बचा भोजन दिया गया। अगले दिन कृष्ण दास श्री चैतन्य महाप्रभु के साथ साथ उनका जलपात्र लिए हुए वृंदावन गया। इस तरह कृष्ण दास ने अपनी पत्नी, घर तथा बच्चे छोड़ दिए, जिससे कि वह श्री चैतन्य महाप्रभु के साथ रह सके। महाप्रभु जहाँ भी जाते वहाँ के सारे लोग कहते, वृंदावन में पुनः कृष्ण प्रकट हुए हैं। एक दिन प्रातः काल अनेक लोग अक्रूर तीर्थ आए, क्योंकि वे वृंदावन से आए थे, अतः वे अधिक कोलाहल कर रहे थे। श्री चैतन्य महाप्रभु को देखकर उन सब ने उनके चरण कमलों में अपना नमस्कार निवेदित किया। तब महाप्रभु ने उन सब से पूछा, तुम लोग कहाँ से आ रहे हो? लोगों ने उत्तर दिया, कालिया दह के जल में कृष्ण पुनः प्रकट हुए हैं। वे कालिया सर्प के फनों पर नाचते हैं और फनों के रत्न चमचमा रहे हैं। सब ने साक्षात कृष्ण को देखा है, इसमें संशय नहीं है। यह सुनकर श्री चैतन्य महाप्रभु हंसने लगे और बोले, यह सब सत्य है। लगातार 3 रातों तक लोग कृष्ण का दर्शन करने कालिया दह गए और हर एक यही कहता हुआ लौटा कि अब हमने साक्षात कृष्ण का दर्शन किया है। हर व्यक्ति श्री चैतन्य महाप्रभु के आगे आकर यही कहता, अब हमने कृष्ण को प्रत्यक्ष देखा है। इस तरह सरस्वती देवी की कृपा से हर व्यक्ति को सच कहना पड़ा। जब लोगों ने श्री चैतन्य महाप्रभु को देखा तो वास्तव में उन्होंने कृष्ण का ही दर्शन किया, किंतु अपने अज्ञान के कारण ही उन्होंने गलत वस्तु को कृष्ण मान लिया था। तभी बलभद्र भट्टाचार्य ने श्री चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों में निवेदन किया, मुझे आज्ञा दे कि मैं जाकर कृष्ण का प्रत्यक्ष दर्शन कर सकूं। जब बलभद्र भट्टाचार्य ने कालिया धाम में कृष्ण का दर्शन करने के लिए आज्ञा चाही, तो श्री चैतन्य महाप्रभु ने यह कहकर दयापूर्वक उसको चपत लगाई, तुम विद्वान होकर भी अन्य मूर्खों की बातों में आकर मूर्ख बन रहे हो, भला कलियुग में कृष्ण क्यों प्रकट होने लगे? भ्रमित मूर्ख लोग ही उत्तेजना फैलाते हैं और कोलाहल मचाते हैं। पागल मत बनो, यहीं बैठे रहो और कल रात में तुम कृष्ण का दर्शन करने जाओगे। अगले दिन कुछ भद्र लोग श्री चैतन्य महाप्रभु से मिलने आए और महाप्रभु ने उनसे पूछा, क्या आपने कृष्ण को देखा? इन भद्र लोगों ने उत्तर दिया, रात में कालिया दह में एक मछुआरा अपनी नाव में दीपक जलाकर मछलियां पकड़ता है। दूर से लोग ब्रह्मवश सोचते हैं कि वे कालिया नाग के शरीर पर कृष्ण को नाचते हुए देख रहे हैं। ये मूर्ख सोचते हैं कि नाव कालिया नाग है और दीपक उसके फनों की मणियां हैं। लोग मछुआरे को भी कृष्ण मान बैठते हैं। सचमुच ही भगवान कृष्ण फिर से वृंदावन में लौट आए हैं। यह सच है और यह भी सच है कि लोगों ने उन्हें देखा है, किंतु वे कृष्ण को कहां देख रहे हैं, यह उनका भ्रम है। यह तो सूखे वृक्ष को पुरुष मानने जैसा है। तब श्री चैतन्य महाप्रभु ने उनसे पूछा, तुमने कृष्ण को प्रत्यक्ष कहां देखा है? लोगों ने उत्तर दिया, आप सन्यासी हैं, अतएव आप चलते फिरते नारायण जंगम नारायण हैं। तब लोगों ने कहा, आप वृंदावन में कृष्ण के अवतार के रूप में प्रकट हुए हैं। आपका दर्शन करने से ही हर व्यक्ति मुक्त हो गया है। श्री चैतन्य महाप्रभु तुरंत बोल पड़े, विष्णु विष्णु मुझे भगवान मत कहो, जीव कभी भी कृष्ण नहीं बन सकता, ऐसी बात कभी मत कहना। सन्यासी निश्चित ही पूर्ण का अंश है, जिस तरह की धूप का चमकता लघु कण सूर्य का अंश होता है, कृष्ण सूर्य के समान है। छह ऐश्वर्यों से पूर्ण किंतु जीव पूर्ण का केवल अंश मात्र है। जीव तथा परम भगवान कभी भी समान नहीं माने जा सकते। जिस तरह की सपुल्लिंग का कण कभी मूल प्रज्वलित अग्नि नहीं माना जा सकता, परम नियंता पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान सदैव दिव्य आनंद से पूर्ण रहते हैं और हालदिनी तथा संवित शक्तियों से युक्त होते हैं, किंतु बद्ध जीव सदैव अज्ञान से आवृत रहता है और जीवन के तीन प्रकार के कष्टों से ग्रस्त रहता है। इस तरह वह सभी प्रकार के कष्टों की खान है। जो मूर्ख यह कहता है कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान जीव के समान है, वह नास्तिक है। वह यमराज द्वारा दंडित होने का पात्र बनता है। जो व्यक्ति ब्रह्मा तथा शिव जैसे देवताओं को नारायण के समकक्ष मानता है, उसे अपराधी अथवा पाषंडी माना जाता है। जब श्री चैतन्य महाप्रभु सामान्य जीव तथा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के बीच का अंतर बतला चुके, तो लोगों ने कहा, आपको कोई भी व्यक्ति सामान्य मनुष्य नहीं मानता। आप हर तरह से शारीरिक लक्षणों तथा गुणों से कृष्ण के तुल्य हैं। हम आपके शारीरिक लक्षणों से देखते हैं कि आप नंद महाराज के पुत्र के अतिरिक्त अन्य कोई नहीं हैं। यद्यपि आपके शरीर की सुनहरी कांति ने आपके मूल वर्ण को आच्छादित कर लिया है, जिस तरह कस्तूरी की महक कपड़े में बांधने पर भी छिपाए नहीं छिपती, उसी तरह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में आपके गुणों को किसी भी प्रकार छिपाया नहीं जा सकता। निसंदेह आपके गुण असाधारण हैं और सामान्य जीव की कल्पना से परे हैं। आपको देख करके ही सारा ब्रह्मांड कृष्ण प्रेम में पागल हो उठता है। यहाँ तक कि स्त्रियां, बच्चे, बूढ़े व्यक्ति, मांसाहारी या अधम जाति वाले व्यक्ति भी आपका एक बार दर्शन करने से तुरंत कृष्ण नाम का कीर्तन करने लगते हैं, पागलों की भांति नाचते हैं और सारे संसार का उद्धार करने में समर्थ गुरु बन जाते हैं। आपके दर्शन के अतिरिक्त जो कोई भी आपका पावन नाम सुनता है, वह कृष्ण प्रेम में पागल बन जाता है और तीनों लोकों का उद्धार करने में सक्षम हो जाता है। आपका पावन नाम सुनने से ही कुत्ते खाने वाले चंडाल पवित्र संत बन जाते हैं। आपकी असाधारण शक्तियों का शब्दों में वर्णन नहीं किया जा सकता। परम भगवान का साक्षात्कार करने वाले लोगों की आध्यात्मिक प्रगति की बात छोड़ दें, चंडाल के परिवार में जन्मा व्यक्ति भी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के नाम का एक बार भी उच्चारण करता है या उनका कीर्तन करता है, उनकी लीलाओं के विषय में सुनता है, उन्हें नमस्कार करता है या उनका स्मरण करता है, तो वह तुरंत वैदिक यज्ञ करने का पात्र बन जाता है। आपकी ये महिमाएं केवल तटस्थ लक्षण हैं। मूलतः आप महाराज नंद के पुत्र हैं। तब श्री चैतन्य महाप्रभु ने वहां पर उपस्थित सभी लोगों को अपनी अहेतु की कृपा प्रदान की और हर व्यक्ति भगवत प्रेम से मत हो उठा। अंत में वे सब अपने अपने घर चले गए। श्री चैतन्य महाप्रभु कुछ दिनों तक अखरूर तीर्थ में रहे। उन्होंने वहां कृष्ण नाम तथा भगवत प्रेम का वितरण करके हर एक का उद्धार किया। माधवेंद्रपुरी के ब्राह्मण शिष्य ने मथुरा में घर घर जाकर अन्य ब्राह्मणों को प्रोत्साहित किया कि श्री चैतन्य महाप्रभु को अपने घरों में आमंत्रित करें। अतः मथुरा के सारे सम्मानित व्यक्ति जिनमें ब्राह्मण अग्रणी थे बलभद्र भट्टाचार्य के पास आए और महाप्रभु के लिए निमंत्रण दिया। प्रतिदिन 10 से 20 निमंत्रण प्राप्त होते, किंतु बलभद्र भट्टाचार्य उनमें से केवल एक को स्वीकार करते। क्योंकि हर एक को श्री चैतन्य महाप्रभु को आमंत्रित करने का अवसर नहीं मिला, अतएव उन्होंने सनोड़िया ब्राह्मण से प्रार्थना की कि वे महाप्रभु से उनका निमंत्रण स्वीकार करने के लिए कहें। कान्यकुब्ज तथा दक्षिण भारत जैसे विभिन्न स्थानों के ब्राह्मणों ने जो वैदिक धर्म के पक्के अनुयायी थे परम धैन्य भाव से श्री चैतन्य महाप्रभु को निमंत्रण दिया। प्रातः काल वे अक्रूर तीर्थ आते और भोजन पकाते थे, फिर इसे शाल ग्राम शिला को अर्पित करने के बाद श्री चैतन्य महाप्रभु को देते। एक दिन श्री चैतन्य महाप्रभु अक्रूर तीर्थ के स्नान घाट पर बैठ गए और इस तरह सोचने लगे। श्री चैतन्य महाप्रभु ने सोचा, इस घाट पर अक्रूर को वैकुंठ लोक दिखा था और सारे ब्रजवासियों ने गोलोक वृंदावन देखा था। यह सोचते हुए अक्रूर किस तरह जल के भीतर रहे, श्री चैतन्य महाप्रभु तुरंत जल में कूद पड़े और कुछ समय तक जल के भीतर रहे। जब कृष्ण दास ने देखा कि चैतन्य महाप्रभु डूब रहे हैं तो वह खूब जोर से चिल्लाया। तुरंत ही बलभद्र भट्टाचार्य ने आकर महाप्रभु को जल से बाहर खींचा। इसके बाद बलभद्र भट्टाचार्य सनोड़िया ब्राह्मण को एकांत स्थान में ले गया और उससे विचार विमर्श किया। बलभद्र भट्टाचार्य ने कहा, क्योंकि आज मैं उपस्थित था इसलिए महाप्रभु को ऊपर खींच पाना मेरे लिए संभव हो सका, किंतु यदि वे वृंदावन में डूबने लगे तो कौन उनकी सहायता करेगा। अब यहाँ पर लोगों की भीड़ होने लगी है और इन निमंत्रणों से बहुत परेशानी होती है। साथ ही महाप्रभु सदैव बाबा वेश में रहते हैं, मुझे यहाँ की स्थिति बहुत अच्छी नहीं लगती। अच्छा यही होगा यदि हम श्री चैतन्य महाप्रभु को वृंदावन से बाहर ले चले, यही मेरा अंतिम निर्णय है। सनोड़िया ब्राह्मण ने कहा, चलो हम उन्हें प्रयाग ले चले और गंगा के किनारे किनारे चले, उस मार्ग से होकर जाना बहुत ही आनंदप्रद होगा। सोरो क्षेत्र नामक तीर्थ स्थान जाकर तथा गंगा स्नान करके हम श्री चैतन्य महाप्रभु को उसी मार्ग से होकर ले चले। अब माघ मास लग रहा है, यदि हम इस समय प्रयाग जाएं तो हमें मकर संक्रांति के अवसर पर कुछ दिन स्नान करने का अवसर मिल जाएगा। सनोड़िया ब्राह्मण ने आगे कहा, तुम अपने मन के भीतर जिस दुख का अनुभव कर रहे हो उसे चैतन्य महाप्रभु के सामने निवेदन करो, तब यह प्रस्ताव रखो कि हम माघ मास की पूर्णिमा को प्रयाग जाना चाहते हैं। तुम महाप्रभु से जाकर उस सुख को बतलाओ जो तुम गंगा नदी के किनारे किनारे यात्रा करने में अनुभव करोगे। अतः बलभद्र भट्टाचार्य ने श्री चैतन्य महाप्रभु से यह प्रार्थना निवेदित की। बलभद्र भट्टाचार्य ने महाप्रभु से बतलाया, मैं अब भीड़ द्वारा किए जाने वाले उपद्रव को और नहीं सह सकता। लोग एक के बाद एक निमंत्रण देने के लिए चले आते हैं, प्रातः काल लोग यहाँ आते हैं और आपको उपस्थित न देखकर मेरा सिर खाते हैं। मुझे बड़ी प्रसन्नता होगी यदि हम कभी गंगा नदी के किनारे के मार्ग से यात्रा करें, तब हमें मकर संक्रांति के अवसर पर प्रयाग में स्नान करने का अवसर प्राप्त हो सकता है। मेरा मन अत्यंत उद्विग्न हो उठा है और मैं इस चिंता को सह नहीं सकता। अब तो आपकी अनुमति पर ही सब निर्भर करता है, आप जो करना चाहे वह मुझे स्वीकार्य होगा। यद्यपि श्री चैतन्य महाप्रभु की इच्छा नहीं थी कि वृंदावन छोड़े, किंतु अपने भक्त की इच्छा पूरी करने के लिए वे मीठे वचन बोले। श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा, तुम मुझे यहाँ वृंदावन दिखलाने के लिए लाए हो, इसके लिए मैं तुम्हारा अत्यधिक ऋणी हूँ और मैं इस ऋण को चुका सकने में समर्थ नहीं हो सकूंगा। जो तुम्हारी इच्छा है वही मैं करूंगा। तुम मुझे जहाँ भी ले जाओगे वहीं जाऊंगा। अगले दिन श्री चैतन्य महाप्रभु जल्दी उठ गए। स्नान करने के बाद यह जानकर कि अब उन्हें वृंदावन छोड़ना है, वे बाबा विष्ट हो गए। यद्यपि महाप्रभु के शरीर में बाह्य लक्षण प्रकट नहीं हुए, किंतु उनका मन प्रेमाविष्ट था। उस समय बलभद्र भट्टाचार्य ने कहा, चलिए महावन गोकुल चलें। यह कहकर बलभद्र भट्टाचार्य ने श्री चैतन्य महाप्रभु को नौका में चढ़ाया और नदी पार करने के बाद वह महाप्रभु को अपने साथ ले गया। राजपूत कृष्णदास तथा सनोड़िया ब्राह्मण दोनों ही गंगा नदी के किनारे के रास्ते से बली भांति परिचित थे। जाते हुए श्री चैतन्य महाप्रभु समझ गए कि अन्य लोग थक गए हैं, अतः वे सबको एक वृक्ष के तले ले गए और बैठ गए। उस वृक्ष के पास बहुत सी गायें चर रही थी और महाप्रभु उन्हें देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए। सहसा एक ग्वाले ने अपनी वंशी बजाई तो महाप्रभु तुरंत प्रेमाविष्ट हो गए। भावाविष्ट होने से महाप्रभु अचेत होकर भूमि पर गिर पड़े। उनके मुख से फेन निकलने लगा और उनकी श्वास रुक गई। जब महाप्रभु बेहोश थे तब वहां 10 अश्वारोही सिपाही जो मुसलमान पठान सैनिक थे आए और घोड़े से उतरे। महाप्रभु को बेहोश देखकर सिपाहियों ने सोचा, इस सन्यासी के पास अवश्य ही काफी मात्रा में सोना होगा। इन चारों दूतों ने दतूरा खिला कर मारने के बाद अवश्य ही इस सन्यासी का धन ले लिया होगा। यह सोचकर पठान सैनिकों ने उन चारों जनों को बंदी बना लिया और उनको मार डालने का निश्चय किया। इसके कारण दोनों बंगाली कांपने लगे। भक्त कृष्णदास राजपूत जाति का था और बहुत निडर था। सनोटिया ब्राह्मण भी निडर था, अतः वह बड़ी बहादुरी से बोला। ब्राह्मण ने कहा, तुम पठान सिपाही अपने राजा के संरक्षण में हो, चलो हम तुम्हारे अधिकारी के पास चलते हैं और उनका निर्णय लेते हैं। यह सन्यासी मेरे गुरु हैं और मैं मथुरा से आया हूँ। मैं ब्राह्मण हूँ और मैं ऐसे सैकड़ों व्यक्तियों को जानता हूँ जो मुसलमान राजा की नौकरी में हैं। ये सन्यासी रोग के कारण कभी कभी बेहोश हो जाते हैं। कृपया बैठ जाएं और आप देखेंगे कि शीघ्र ही उन्हें चेतना आ जाएगी और वे सामान्य हो जाएंगे। आप थोड़ी देर बैठे रहें और हम सबको बंदी बनाए रखें। जब इन सन्यासी को होश आ जाए तब आप इनसे पूछिए। तब यदि आप चाहें तो हम सबको मार सकते हैं। पठान सिपाहियों ने कहा, तुम सभी दुष्ट हो। तुम में से एक पश्चिम से है, एक मथुरा जिले से है और अन्य दो जो कांप रहे हैं बंगाल के हैं। राजपूत कृष्णदास ने कहा, मेरा घर यही है और मेरे पास लगभग 200 तुर्की सिपाही तथा 100 तोपे हैं। यदि मैं पुकारूं तो वे तुरंत आकर तुम्हारा वध कर देंगे और तुम्हारे घोड़े तथा काठी लूट लेंगे। बंगाली यात्री धूर्त नहीं है, तुम ही धूर्त हो जो यात्रियों को मारकर लूटना चाहते हो। यह ललकार सुनकर पठान सिपाही हिचकिचाए। तभी श्री चैतन्य महाप्रभु की सहसा चेतना लौट आई। चेतना आने पर महाप्रभु जोर जोर से हरि हरि का उच्चारण करने लगे। वे अपनी दोनों बाहें ऊपर उठाकर प्रेमावेश में नृत्य करने लगे। जब प्रेमावेश में महाप्रभु ने गर्जना की तो मुसलमान सिपाहियों को लगा कि उनके हृदयों पर वज्रपात हो गया है। सभी पठान सिपाहियों ने भय के मारे चारों व्यक्तियों को छोड़ दिया। इस तरह श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपने निजी संगियों को बंदी रूप में नहीं देखा। तभी बलभद्र भट्टाचार्य ने श्री चैतन्य महाप्रभु के पास जाकर उन्हें पकड़कर बैठाया। मुसलमान सिपाहियों को देखकर महाप्रभु को बाह्य चेतना हो गई। तब सारे मुसलमान सिपाही महाप्रभु के समक्ष आए। उन्होंने उनके चरण कमलों की वंदना की और कहा, ये चारों दूत ठग हैं। इन चारों ने मिलकर आपको दतूरा खिलाया और आपको पागल बनाकर आपका सारा धन ले लिया है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा, ये चारों ठग नहीं हैं, ये मेरे साथी हैं। सन्यासी भिक्षुक होने के कारण मेरे पास कुछ भी नहीं है। मिर्गी रोग के कारण मैं कभी कभी बेहोश हो जाता हूँ। ये चारों दयावश मेरी देख रेख करते हैं। उन मुसलमानों में से एक गंभीर व्यक्ति था जो काले वस्त्र पहने था। लोग उसे साधु पुरुष पीर कहते थे। उस पीर का मन श्री चैतन्य महाप्रभु को देखकर मृदु हो गया। उसने उनसे बात करनी चाही और अपने शास्त्र कुरान के आधार पर निर्विशेष ब्रह्म की स्थापना करनी चाही। जब उस पीर ने कुरान के आधार पर परम सत्य की निर्विशेष ब्रह्मवाद के रूप में स्थापना करने का प्रयास किया तो श्री चैतन्य महाप्रभु ने उसके तर्कों का खंडन किया। वह जो भी तर्क प्रस्तुत करता, महाप्रभु उन सब का खंडन कर देते। अंत में वह व्यक्ति स्तंभित रह गया और कुछ भी बोल न सका। श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा, पुराण द्वारा निश्चय ही निर्विशेषवाद स्थापित होता है, किंतु अंत में यह निर्विशेषवाद का खंडन करके साकार ईश्वर की स्थापना करता है। कुरान इस तथ्य को स्वीकार करता है कि अंततो गत्वा ईश्वर केवल एक है, वे ऐश्वर्य से पूर्ण हैं और उनका शारीरिक वर्ण श्याम काला है। कुरान के अनुसार भगवान का स्वरूप सनातन आनंदमय तथा दिव्य है। वे परम सत्य सर्वव्यापक सर्वज्ञ तथा शाश्वत व्यक्ति हैं। वे सभी वस्तुओं के उद्गम हैं। सृष्टि पालन तथा संहार उन्हीं से होते हैं। वे समस्त स्थूल तथा सूक्ष्म प्राकृतियों के मूल आश्रय हैं। भगवान सबके द्वारा आराध्य परम सत्य हैं। वे समस्त कारणों के कारण हैं। उनकी भक्ति करने से जीव भव बंधन से छूट जाता है। कोई भी बद्ध जीव पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की सेवा किए बिना भव बंधन से छूट नहीं सकता। जीवन का चरम उद्देश्य उनके चरणों के प्रति प्रेम है। मुक्ति का सुख जिसमें मनुष्य का भगवान से एकाकार हो जाता है, भगवान के चरण कमलों की सेवा करने से प्राप्त होने वाले दिव्य आनंद के एक अंश के भी बराबर नहीं है। कुरान में सकाम कर्म ज्ञान योग तथा सर्वोपरि से मिलने का वर्णन मिलता है, किंतु अंततः हर बात का खंडन होता है और भगवान के साकार रूप तथा उनकी भक्ति की स्थापना होती है। पुराण के विद्वान ज्ञान में अधिक उन्नत नहीं है। यद्यपि कई विधियों का वर्णन हुआ है, किंतु वे यह नहीं जानते कि अंतिम निर्णय को सबसे बलवान मानना चाहिए। अपने पुराण को देखकर तथा उसमें जो कुछ लिखा है उस पर विचार करने के बाद तुम्हारा निर्णय क्या है? उस मुसलमान संत ने उत्तर दिया, आपने जो कुछ कहा है वह सत्य है। यह पुराण में लिखा अवश्य है, किंतु हमारे विद्वान न तो इसे समझते हैं न स्वीकार करते हैं। सामान्यतया वे भगवान के निर्विशेष पक्ष का वर्णन करते हैं, किंतु उन्हें शायद ही इसका ज्ञान हो कि भगवान का साकार रूप पूजनीय है। निसंदेह उनमें इस ज्ञान का अभाव है। क्योंकि आप वही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं, अतएव मुझ पर कृपा कीजिए। मैं पतित और अयोग्य हूँ। मैंने मुसलमान शास्त्र का विस्तार से अध्ययन किया है, किंतु मैं अंतिम रूप से यह निश्चित नहीं कर सकता कि जीवन का चरम लक्ष्य क्या है अथवा उस तक मैं कैसे पहुंच सकता हूँ। अब आपको देखकर मेरी जीभ हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन कर रही है। अब मेरा यह मिथ्या अभिमान दूर हो गया है कि मैं विद्वान हूँ। यह कहकर वह संत मुसलमान श्री चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों पर गिर पड़ा और उनसे प्रार्थना की कि वे जीवन के चरम लक्ष्य तथा उसे प्राप्त करने की विधि के बारे में उससे कहें। श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा, कृपया उठो, तुमने कृष्ण के पवित्र नाम का उच्चारण किया है, अतः तुम्हारे करोड़ों जन्मों के पापों के फल चले गए, अब तुम शुद्ध हो गए हो। तब श्री चैतन्य महाप्रभु ने वहां उपस्थित सारे मुसलमानों से कहा, कृष्ण के पवित्र नाम का कीर्तन करो, कृष्ण के पवित्र नाम का कीर्तन करो। जब वे सब कीर्तन करने लगे तो वे सभी प्रेमाविष्ट हो गए। इस तरह श्री चैतन्य महाप्रभु ने प्रत्यक्ष रूप से उस संत मुसलमान को कृष्ण नाम का कीर्तन करने का उपदेश देकर उसे दीक्षित कर दिया। उसका नाम बदलकर रामदास कर दिया गया। एक अन्य पठान भी वहां था, उसका नाम बिजुली खान रखा गया। बिजुली खान नव युवक था और राजा का पुत्र था। रामदास आदि अन्य सारे पठान उसके नौकर थे। बिजुली खान भी श्री चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों पर गिर पड़ा और महाप्रभु ने उसके सिर पर अपना चरण रखा। इस तरह उन सब पर कृपा करने के बाद श्री चैतन्य महाप्रभु चल पड़े। तब सारे पठान मुस्लिम साधु बेरागी हो गए। ये ही पठान बाद में पठान वैष्णवों के नाम से विख्यात हुए। वे देश भर घूम घूम कर श्री चैतन्य महाप्रभु की कीर्ति का गुणगान करने लगे। बिजुली खान बहुत बड़ा भक्त बन गया और उसका महत्व प्रत्येक तीर्थ स्थान में विख्यात हो गया। इस तरह श्री चैतन्य महाप्रभु ने लीलाएं की। उन्होंने भारत के पश्चिमी भाग में आकर यवनों तथा मलेच्छों को सौभाग्य प्रदान किया। इसके बाद श्री चैतन्य महाप्रभु सोरो क्षेत्र नामक तीर्थ स्थान गए। उन्होंने वहां गंगा नदी में स्नान किया और फिर वे गंगा के किनारे किनारे प्रयाग के लिए चल पड़े। सोरो क्षेत्र में महाप्रभु ने सनोडिया ब्राह्मण तथा राजपूत कृष्ण दास से घर लौट जाने के लिए कहा, किंतु वे हाथ जोड़कर इस प्रकार बोले। उन्होंने प्रार्थना की, हमें अपने साथ प्रयाग तक चलने दे, यदि हम अभी नहीं जाते तो हमें आपके चरण कमलों का संग फिर कब मिल पाएगा। यह देश मुख्यतया मुसलमानों से भरा पड़ा है, कोई किसी भी स्थान में उत्पात कर सकता है। यद्यपि आपका संगी बलभद्र भट्टाचार्य विद्वान है, किंतु वह स्थानीय भाषा में बात करना नहीं जानता। यह सुनकर श्री चैतन्य महाप्रभु ने थोड़ा हंसते हुए उनका प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। इस तरह वे दोनों उनके साथ चलते रहे। जो भी श्री चैतन्य महाप्रभु का दर्शन करता वह भावाविष्ट हो जाता और हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन करने लगता। जो भी श्री चैतन्य महाप्रभु से मिला वह वैष्णव बन गया और जो भी इस वैष्णव से मिला वह भी वैष्णव बन गया। इस तरह एक के बाद एक सारे नगर वासी तथा ग्राम वासी वैष्णव बन गए। जिस तरह महाप्रभु ने अपनी यात्रा से दक्षिण भारत को भगवत प्रेम से आप्लावित कर दिया था, उसी तरह उन्होंने देश के पश्चिमी भाग को भी भगवत प्रेम से आप्लावित किया। अंत में श्री चैतन्य महाप्रभु प्रयाग पहुंचे और मकर संक्रांति माघ मेला के अवसर पर लगातार 10 दिनों तक गंगा तथा यमुना नदी के संगम में स्नान किया। श्री चैतन्य महाप्रभु का वृंदावन गमन और वहां पर उनकी लीलाएं अनंत हैं। यहां तक कि सहस्रपनों वाले भगवान शेष भी उनके कार्यकलापों का अंत नहीं पा सकते। भला कौन सामान्य जीव श्री चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं का वर्णन कर सकता है। मैंने तो सार रूप में सामान्य दिशा निर्देशन ही किया है। श्री चैतन्य महाप्रभु की लीलाएं तथा रीतियां असाधारण हैं। जो अभागा होगा वही इन बातों को सुनने के बाद भी उन पर विश्वास नहीं करेगा। श्री चैतन्य महाप्रभु की लीलाएं शुरू से लेकर अंत तक अलौकिक हैं। उन्हें श्रद्धा पूर्वक सुनना चाहिए और सत्य के रूप में स्वीकार करना चाहिए। जो भी इनके विषय में तर्क करता है वह महामूर्ख है। वह जानबूझकर अपने ही स्तर पर व्रजपात करता है। श्री चैतन्य महाप्रभु की लीलाएं अमृत के सागर तुल्य हैं। इस समुद्र की एक बूंद भी सारे संसार को दिव्य आनंद से अप्लावित कर सकती है। श्री रूप तथा श्री रघुनाथ के चरण कमलों में प्रार्थना करते हुए और उनकी कृपा की सदैव आकांक्षा करते हुए मैं कृष्ण दास उनके चरण चिन्हों का अनुसरण करते हुए श्री चैतन्य चरिता अमृत कह रहा हूँ। इस तरह श्री चैतन्य चरिता अमृत मध्य लीला के 18वें अध्याय का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ, जिसमें महाप्रभु की वृंदावन यात्रा तथा प्रयाग जाते हुए मुसलमान सिपाहियों के धर्म परिवर्तन का वर्णन हुआ है।
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे।